ओम शांति। जो कल चलने वाली जो मुरली है उसमें होमवर्क जो हमें मिला था सेल्फ चेकिंग मेथड, तो सेल्फ चेकिंग अर्थात पूरे मुरली से जो फोकस पॉइंट किया गया है उसमें हमने किस रूप से उसको चेक करना है और किस रूप से हमने चेक किया है उसके बारे में, जैसे कि इसमें दो चार पॉइंट लिया गया है और उससे भी ज़्यादा होंगे लेकिन तो उसमें बाप दूरांदेशी है तो बच्चे भी दूरांदेशी है, लेकिन बाबा लोक से आए हैं, लोक से बच्चे देश से आए, तो हम भी उस बाप के बच्चे हैं। तो द्वापर से यहाँ तक आते आते हम लोग ने ऊपर से आई हुई स्मृतियाँ खो दिया, तो अब बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं तो ऊपर जाना है, ऊपर के लोक में जाना है अपने शांति धाम परम धाम। तो स्मृतियाँ कितना समय रहती है कि मुझे अपना घर जाना है, तो बाप का संग का रंग कितना चढ़ा है, मैं अपने आप को चेक करता हूँ और चेक करती हूँ कि बाप जैसे मैं कितना तक बनी हूँ, कितने बार दिन में स्मृतियाँ आती अपना घर जाने की और अपने स्वरूप में ढलने की। तो इसको स्वयं में चेक करना, इसको बार बार स्मृति में लाना कि मैं भी चमकीली ड्रेस धारण करके अपना घर जाने की तैयारी कहाँ तक कर पा रहे हूँ, क्या मैं सारा दिन भर कितने बार मैं इस स्मृति में रहती हूँ अथवा रहता हूँ कि अपने घर जब बुलावा आए सीटी बजे और हम सेकेंड में पहुँच जाए। तो कई बार इसका अगर रिहर्सल होता है तो फिर जाने में कहते हैं ना बाबा मक्खन से जो बाल निकलता है जैसे सहज रूप से, इसी रीति से देह से हम कितने बार डिटैच होते हैं इसका चेक करना है, इसको हम बार बार चेकिंग करते रहे। तो दूसरा है कि सहज योगी कहते तो है, सहज योगी हम समझते तो हैं लेकिन याद में बैठते हैं तो कितना समय लगता है बाबा से, बाबा के साथ में कनेक्शन जोड़ने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, और हमारी बातें बाबा तक पहुंचती है, उसका रेस्पॉन्स हमें मिलता है नहीं मिलता है। कभी कभी सहयोगी का टाइटल तो लेते हैं लेकिन घंटा भर में भी योग नहीं लगता है, कनेक्शन ही नहीं जुड़ता है। इसलिए आजकल जियो का जमाना चल रहा है, चारों तरफ फागियाँ आती है तो जियो नहीं चलता है। तो कभी कभी मन बुद्धि के अंदर में भी सारे दिन भर की जो मलिनता के कारण से भागी लग जाती है, तो युग में तो बढ़ते हैं लेकिन कनेक्शन नहीं जुड़ता है, लाइन नहीं मिलती है। तो कभी कभी हम ही याद करते रहते हैं लेकिन बाबा का याद हम तक पहुंच नहीं पाता। तो इसको भी सहयोगी का टाइटल लेने में कहने में तो मजा आता है लेकिन सहज बाबा कहते याद हो जाए, बाबा कहते स्मृति में हम डूब जाए और बाबा की शक्ति का एहसास हो अनुभव हो, तो उसको ही कहा जाता है सहजयोग। इसीलिए बाबा ने नाम तो अच्छा दिया है सहजयोगी जीवन है, लेकिन इतना सहज भी नहीं। सारा दिन भर अगर अटेंशन होगा, सारा दिनचर्या में अगर ध्यान रखते हैं तो जब चाहे तब हम याद कर सकते हैं बाबा को और बाबा से जुड़ जाते हैं और बाबा की सारी शक्तियों की महसूसता होने लगती है। नहीं तो फिर सहजयोगी ये रटने के लिए और जपने के लिए नहीं है, ये अनुभव करने की बात है। तो तीसरा है त्रष्टिपन की भाव। तो त्रष्टि अर्थात बाबा की जो भी चीज मिले हैं हमको आज, संकल्प बोल कर्म दृष्टि वृत्ति स्मृतियाँ जो हम सबको मिले हैं, तो बाबा को देखाए बिना, बाबा को सुनाए बिना, बाबा को कहे बिना कोई चीज़ हम उसको यूज न करें और बाबा को बताए बिना उस समय शक्ति संकल्प एनर्जी अगर वेस्ट जा रहा है तो उसमें तृष्टिपन नहीं, बाबा को पूछ के ही किया जाए कोई भी संकल्प, कोई भी जहाँ भी देख रहे हैं तो बाबा के कहने अनुसार हम देख रहे हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार देख रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि आँखों में बुद्धि ने कब्जा किया हुआ है या तो मन ने कब्जा किया हुआ है क्योंकि अगर मन ने कब्जा किया हुआ है तो पांच फुट की मनुष्य आत्माओं की स्मृति है उसमें, अगर बुद्धि ने आंखों में कब्जा किया हुआ है तो हम आत्माभिमानी स्थिति में है। तो आत्माभिमानी स्थिति में होंगे तो बाबा ने जो आज्ञा दिया है, मस्तक पर देखना है, भ्रकुटी में देखना है, आत्मा को ही देखना है, और बुद्धि ने कब्जा किया हुआ है तो यह करना सहज होगा, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। नहीं तो पांच फुट के इंसान ही स्मृति में रहता, खुद भी पांच फुट के और दूसरा आगे वाला भी जो जो पांच फुट का इंसान तो इस तरीके से स्मृति में आती है। तो चौथा है और जो भी है, तो इसका तीसरा है तो पूरा हो गया। चौथा कि बाबा ने हम सबको कि स्पेशल बाप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, तो बाप स्पेशल है तो बच्चे भी स्पेशल हैं, तो स्पेशल मिलने के लिए आए हैं, जैसे फॉरेनर्स का टर्न था होगा, इसीलिए हम भी आजकल बाबा से मिलने के लिए आते हैं तो यहाँ से नीचे जाते हैं, तो स्मृति क्या मैं भी बाबा से खास स्पेशल मिलने के लिए जा रही हूँ तो जा रहा हूँ, तो इस प्रकार का अनुभव मैं करती हूँ, सारी दिन की तैयारियाँ उस समय उस दिन के लिए, तो ऐसे तो कहने का बात होता है कि सारे साल की तैयारी है। तो शांतिवन में जब हम मिलने जाते हैं तो मिलने आते हैं, तो अव्यक्त तो बाबा साकार में जो मिलने आते थे तो उसका तो हम सब अनुभवी हैं, लेकिन जो हम उसको स्पेशल कैसे बनाएंगे, तो स्पेशल बनाने के लिए जैसे कि कुछ प्रोग्राम करना पड़ेगा ना, जैसे कभी कभी पहले जब हम बाबा से मिलने जाते थे तो हम उस प्रकार से तैयारी करते थे, जैसे कि बाबा परम धाम से है ना सूक्ष्म लोक में आए हैं तो बच्चों से मिलने की तैयारी कर रहे हैं बाबा, तो सारे आए हुए बच्चों को सूक्ष्म बतन में इमर्ज करके सबको दृष्टि दे रहे हैं, सबको शक्ति भर रहे हैं। फिर मैं भी जो ऐसा करता था, सैकड़ों गेट बनाता था सूक्ष्म लोक से नीचे तक आने के लिए, और बाबा को हम वेलकम करते थे, बाबा किसी गेट में कोई स्लोगन होता था, किसी गेट में कोई स्लोगन, तो उस समय फिर इधर उधर करने का फुर्सत नहीं मिलता था, और कोई नदीक वाले दोस्त को भी नदीक लेके नहीं जाते थे हम नदीक बैठने की भी संकल्प नहीं होता था, नहीं तो हम उसी में इंगेज हो जाएंगे तो वो काम कर ही नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा अलग होकर के इस प्रकार से बाबा को वेलकम करते थे, तो उसमें घंटों कैसे निकल जाता था वो पता ही नहीं चलता था। तो हर दिन बाबा से वो तो अभी हम साल में 12 बार का तो टर्न होता है, लेकिन अमृत वेले का जो अनुभव है उससे भी ज़्यादा हम आज कर सकते अनुभव, क्योंकि डायमंड हॉल में तो बाबा आते हैं तो साकार में देखते हैं, लेकिन ये संगम की खूबी है, हम हमारा तन यहाँ है, हमारा मन वहाँ है, ये सबसे बड़ी अनुभव की बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं डायमंड हॉल में आ भी जाऊँ लेकिन मुझे यार अपने घर में करना है, तो इस प्रकार के अनुभव हमको करना है। तो चार हो गए ना, तो उसके बाद में बाबा ने बोला खत लिखो खत, तो बाबा ने बोला कि आजकल तो ये खत लिखने का सिस्टम भी लगभग समाप्त हो गया होगा, क्योंकि ईमेल ये फेसबुक ये सब प्रकार के जो सारे नेट के कारण से जो मन का जो उद्गार लिखने का जो अनुभव उस समय होता था अब आज ये नहीं होता है, क्योंकि आज 10 उंगली चलते हैं लेकिन ये बाबा को याद करने के लिए खत लिखने के लिए फुर्सत नहीं। उस समय ये 2 उंगली से पकड़ के बाबा से आधा आधा घंटा 10-10 मिनट 20-20 मिनट तक बाबा से ऐसी बातें लिखी जाती थी, इतना मजा आता था। तो आज वो कंप्यूटर के कारण से वो भी चीजें, जैसे कि बाबा भी स्मार्ट हो गया, राम भी स्मार्ट हो गया, ऐसे लगता है। इसलिए खत लिखना बहुत जरूरी है, खत लिखना इतना कि जैसे कि मन की बातें बाबा से किया जा सकता है, और इतना रिफ्रेशमेंट का अनुभव होता है, जैसे बाबा मेरा सब उत्तर दे रहा है और सारी समस्या हल कर रहा है। तो जब तक दो चार लाइन न लिखे तब तक हमको खटिया तक पहुंचने नहीं चाहिए। तो हर दिन ये रूटीन हमको अगर डालेंगे, हाँ अपने चाहे, तो इसीलिए ये खत लिखने का सिस्टम अभी ब्राह्मण से ही शुरू करना पड़ेगा फिर, क्योंकि शुरू तब से हुई थी लेकिन अभी मर्ज हो रहा है, फिर इसको सदा कायम रखना है। तो जैसे टाइम तो हो गया है, ऐसे दो चार पॉइंट और बाकी है। ओम शांति। जैसे कि सहज योगी में सेकंड में योग लग जाए, हाँ जैसे कि मैं बाबा दूरान देश का है, तो मैं भी दूर रहने वाले बाबा को है ना, हाँ अच्छा आगे वाला, तो उसमें बाबा ने बोला कि जो स्पेशल बाबा है ना, स्पेशल मिलन, अच्छा तो इसीलिए हाँ आगे एक बोल मैं बता देता हूँ क्या कि इसमें डबल लाइट भी है, कैसे डबल लाइट में रह सकता हूँ, रूहानी खुशबू मैं कैसे फैला सकता हूँ। तो लगभग सात आठ हो ही गए। ओम शांति।
ओम शांति। कल संडे जो मुरली चलने वाली है, उस मुरली का जो होमवर्क मिला था, मैं होमवर्क में वार्निंग मेथड है, तो वार्निंग मेथड से कुछ पांच पॉइंट निकाले हैं। तो बाबा के द्वारा हमें क्या वार्निंग मिली है? वार्निंग मतलब वो बाबा तो ज़्यादा वार्निंग नहीं देते, धारणा स्वरूप बताते हैं। तो वो पॉइंट निकाले, पहली पॉइंट है कि डबल लाइट से हम कैसे मेहनत और मुश्किल शब्द को समाप्त कर सकते हैं डबल लाइट की स्थिति से। तो डबल लाइट स्थिति सभी को पता है ना, लाइट एक तो लाइट हो जाना है, दूसरा डबल सरीन जैसे जो भी कार्य करते हैं हम, तो वह ईश्वरीय सेवा है यह समझ के करना है, और बाबा का कार्य है ये ट्रस्टी, हम ट्रस्टी है और ट्रस्टी बन के करना है। तो मेहनत जो होती है, मेहनत लगती है वो मोहम्मद में बदल जाती है और हम फिर डबल लाइट बन जाते हैं और ये सेवा इजी हो जाती, सहज हो जाती। फिर दूसरी पॉइंट है रूहानी की शक्ति से संपन्न बनो, इसके लिए एक वर्ता भाव का वरदान कार्य में लाना है, एक बाबा दूसरा कोई, और बार बार अपने को अंडरलाइन कर पवित्र बनो यह कर्म में लाना है, पवित्रता का व्रत धारण करना है, रूहानियत को सदा कायम रखने के लिए जब स्वयं और दूसरों को तथा जिसके सेवा के निमित्त है हम उन्हें हमें बाप दादा की अमानत समझना है। फिर तीसरी पॉइंट है अभी परीक्षाओं के पेपर देने के लिए तैयार हो जाओ। चेतावनी, अगर रूहानियत की शक्ति नहीं होगी तो माया के अनेक प्रकार के रंगत में फंस जाएंगे, इसलिए रूहानियत की शक्ति से संपन्न बनना ही है, नहीं तो पेपर में सहज पास नहीं हो पाएंगे। फिर चौथी पॉइंट थी डबल लाइट फरिश्ता बन के दिखाओ, नहीं तो उड़ नहीं पाएंगे, पंख कट जाएंगे। फरिश्तों को हमेशा पंख दिखाते हैं ताकि उड़ती कला में उड़ता रहे, लेकिन पंख ही नहीं तो नहीं उड़ पाएंगे। तो फरिश्ता अर्थात ऊंची स्थिति में रहने वाले, नीची गिरने वाले नहीं। पांचवी पॉइंट थी ज्ञानयुक्त रहम के साथ रूहानियत का रुहाब धारण करो। रुहाब धारण करो नहीं तो ज्ञानयुक्त रहम माना अपने अंदर रूहानियत की खुशबू धारण करना है। रहम अच्छा रहम बाबा के जो बच्चे हैं अभी तक जो तड़प रहे हैं माना दुख और अशांति में, हाँ तो उन आत्माओं को हमें अपने रूहानियत की खुशबू से ज्ञानयुक्त रहम हाँ तो उन आत्माओं को जो भटक रही है उन आत्माओं को ज्ञान में लाना है। तो ये ओम शांति। तो ये पांच पॉइंट थी। ओके
ओम शांति। ये कल चलने वाला जो मुरली है इसमें से कंट्रांस मेथड है परस्पर तुलना। हाँ उसमें से सबसे पहली पॉइंट है कि बाबा दूरादेशी है और बच्चे भी दूर दूर से आते हैं, डबल विदेशी। बाबा को आने में सेकेंड लगता है और बच्चों को आने में कई दिन लग जाता है। आप लोग भी कई दिन लगा के आए होंगे ना ट्रेन में। ट्रेन चाहिए या प्लेन चाहिए, बस चाहिए हमें आने के लिए। बाबा को कुछ नहीं, बाबा स्नेहा की विमान में आ जाते हैं और स्नेहा की विमान में चले जाते हैं। बाबा को कोई खर्चा नहीं लगता यहाँ तक आने में, और बच्चों को कई खर्चा लगाना पड़ता है, खाने पीने की सब इंतजाम करना पड़ता है। बाबा को ये कोई चीज़ चाहिए नहीं। तो ऐसा दूरादेशी बाबा का बच्चे, हम भी दूरादेशी। अभी हम भी बाबा जैसे ही हल्का होकर के अपने घर से मधुबन तक आ सकते हैं बिना खर्चे, बिना मेहनत। तो ये हुआ पहला। और बाबा ने कहा है कि लाइट की बात किए हैं, स्नेह की, प्यार की, स्नेह प्यार की बोल दिए पूंजी, स्नेह प्यार। और लाइट की बात किए हैं कि जैसे दुनिया में लाइट होता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। कल लाइट गया था, गई थी तो क्या है, जुगाड़ से चलाया था। अभी बाबा ने हमें लाइट दिए है, स्मृति की लाइट है, हल्कापन दिए है, और फरिश्ता के स्वरूप दिए है। तो ये लाइट स्थिति जो है, डबल लाइट की अवस्था से हम हल्का हो सकते हैं। और दुनियादारी लाइट से क्या होता है, दुख मिलता है, आज है कल नहीं है तो वो दुख देता है। और ये लाइट जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, दो वायर को छुटा करके फिर जोड़ना पड़ता है। तो अभी इस लाइट को जोड़ने के लिए भी शरीर की बांध को निकाल कर फिर परमात्मा में अपनी बुद्धि को जोड़ना पड़ता है तो लाइट जलता है। और बाबा ने दैवी जन्म की बात किए है और मनुष्य जन्म की और ईश्वरीय जन्म की बात किए है। दैवी जन्म था सती की दुनिया में, कितनी खुशी था, अपनी राज्य था, राजाई में रहते थे, खुशहाल में रहते थे, कोई दुख नहीं था। और मनुष्य बने द्वापर युग से, तो क्या हुआ, राजा का नौकरी करने लग गए, नौकरी किए, दुख उठाए, झमेला झेले। और अभी बाबा आकर क्या कर रहे हैं, हमें उन दुखों से हमें छुड़ा रहे हैं। नौकरी से तो छुड़ाए नहीं, पर अपने मन से उस नौकरी को भी सेवा के हिसाब से हम कर रहे हैं, तो जीवन जीने के लिए वो एक आसान बन रहा है। तो ये तीन चीज़ों को बाबा ने तुलना किया है, ईश्वरीय जीवन, फिर मनुष्य जीवन और दैवी प्रारब्ध की जो जीवन है उसकी बात है। और बाबा ने ट्रस्ट की बात की है, ट्रस्टी। दुनियादारी ट्रस्टी कैसे होते हैं, कोई एक संस्था के लिए ट्रस्टी बनते हैं और बाद में जब अपने घर में जाएंगे, अपने परिवार जाएंगे, तो अपनी ट्रस्टीपना तो उसमें रहता नहीं है। और बाबा का जो बच्चे है वो क्या है, ट्रस्टी समझ के इस संस्था में आते हैं और बाबा ने कहा है कि आपको घर में भी ट्रस्टी होके ही रहना है, वो ट्रस्टीपना हमेशा रहना है। दुनियादारी का क्या होता है, ट्रस्टीपना कोई लिमिट होता है, एक संस्था के लिए होता है, बाकी हमेशा नहीं होता। हमको हमेशा के लिए ट्रस्टीपना में रहना है। और बाबा ने गुप्त गंगा की बात किए है, गुप्त गंगा। जैसे दीदी ने अपनी भौतिक देह त्याग किए तो अभी दीदी दादी में आकर मिल गए, तो ये गुप्त गंगा ये बन गई है। और बाहर दुनिया में भी तीन गंगा की बात करते और एक गंगा गुप्त है बोलते हैं, तीन नदी तो एक गुप्त है बोलते हैं। तो ये अच्छा गुप्त गंगा की यहाँ पर बाबा ने बात की है, तो ये हुआ। और कर्म बंधन से अभी हम कर्मातीत हो रहे हैं। कर्म बंधन जो खींचता है हमें, बाहर दुनिया में रहते हैं तो कर्म संबंध बनता है, जो भी किसी से हम लेन देन करते हैं वो कर्म बंधन में आ जाता है। और बाबा का जो बन जाते हैं, बाबा से हमारा लेन देन होता है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त होते जाते हैं। तो ये कर्म बंधन की भी बातें हैं। और चित्र और विचित्र की बातें हैं। चित्र, चित्र में रहेंगे तो क्या होता है, वो चित्र मतलब ये शरीर, शरीर में रहेंगे तो ये ज़्यादा सेवा नहीं कर सकता। और हमारा जो चरित्र, विचित्र अवस्था में हम जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बहुतों को संदेश दे सकते हैं, बहुतों को एक साथ में सेवा कर सकते हैं। और लौकिक संबंधी अलौकिक संबंधी की बाबा ने बात की है। लौकिक तो हम जानते ही है, दुखदायी संसार है और दुख देने वाले ही है। तो बाबा का जो अलौकिक संबंध बन जाता है तो उसमें खुशी रहता है, हल्कापन रहता है, कोई एक दूसरे में दुख देने की ऐसी संस्कार नहीं बनता। और बाबा ने वायुमंडल की बात की है। अभी वायुमंडल क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है, वैसे ही हमारा मन में भी, मन की वायुमंडल में भी बारिश न हो दुख की पीड़ा की। तो अपने मन की वायुमंडल को स्वच्छ रखना है, हाँ, ज्ञान की बारिश हो अपने मन में, खुशी की बारिश हो। जैसे दुनिया की वायुमंडल में कोई चीज़ अगर निकलता है, जैसे कोई जगह में बम फटता है तो वो पूरा दुनिया में दुखदायी अवस्था ले आता है, तो हमारे मन में भी कोई दुख की ऐसी कोई गोला न फूटे जो फिर सबको वो दुख देता रहे। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। तो 23-12-83 में जो कल रिवाइज होगी और उसका हम कई सारी मेथड के द्वारा उसको चिंतन कर रहे हैं, तो अभी भविष्यवाणी मेथड के द्वारा जो बाबा ने क्या भविष्यवाणी किया है उस मेथड के द्वारा हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमने बहुत ढूंढा लेकिन पकड़ में नहीं आया उसमें भविष्यवाणी, फिर भी कोशिश किया है पकड़ने का, अगर कुछ और पकड़ में आ गया हो तो आप सब देख लीजिएगा। तो बाबा ने कहा है बाबा कहते हैं परिस्थिति में घबराने के बजाय अगर साक्षी हो जाओ तो क्या हो जाएगा, विजय बन जाएंगे। अगर विजय बनना है तो परिस्थिति में साक्षी हो जाना पड़ेगा। शक्तिशाली स्थिति द्वारा अगर कर्म करते हैं, बाबा कहते हैं अगर शक्तिशाली स्थिति द्वारा कर्म करते हैं तो शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य हमें बना देगा। अगर पूजनीय और गायन योग्य बनना है बाबा कहते हैं तो शक्तिशाली स्थिति में स्थित होकर हमें कौन सा दान और कौन सा पुण्य करना है, ज्ञान का दान करना है और श्रेष्ठ कर्म का पुण्य कर्म करना है। हर्षितपन के, आपके हर्षितपन के संस्कार समय पर आपके अंदर अगर हर्षितपन के संस्कार है तो समय पे काम देगा। रूहानियत का अगर वायुमंडल हम बनाएंगे, बाबा कहते अगर आप बनाओगे तो आसपास वाले खींच करके आएंगे, नहीं तो कितना भी मेहनत करके करेंगे खींच कर नहीं आएंगे, और ही दूर हो जाएंगे। हम सेवा में मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम शायद रूहानियत में रह के सेवा नहीं करते हैं, हम बाह्यमुखी हो जाते हैं। बाबा सावधान कर रहे हैं, भविष्यवाणी में हमें सावधान कर रहे हैं कि बच्चे अभी रूहानियत से संपन्न होने का समय है, अभी रूहानियत में संपन्न होने का समय है। अगर संपन्न नहीं हुआ तो माया अपनी रंगत दिखाएगी। रंगत क्या दिखाएगी? घसीट के ले जाएगी यहां से। पहले तो बहुत प्यार से पुचकार देंगी, फिर धीरे धीरे क्या करेगी तो गला दबा के ओम शांति कर देगी। अभी हमारा नेत्र कौन सा हो गया है? दिव्य नेत्र है। तो दिव्य नेत्र से नेत्र क्लीन और क्लियर जितना होगा उतना हम मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन के स्पष्ट चित्र हमें दिखाई देगा। समय प्रमाण दुनिया क्या चाहती है? समय प्रमाण दुनिया रौनक देखना चाहती है। तो इसीलिए बाबा कहते हर कर्म करते, हर संकल्प करते, हर वाणी में रूहानियत की शक्ति धारण करो। हर एक को और अपने को भगवान का अमानत समझो। तो अमानत में कभी क्या नहीं आएगा? खयानत नहीं आएगा। संकल्प जो मन में चलता है उस संकल्प को भी क्या समझो? तो भगवान के अमानत समझो। तो क्या आएगी? तो हमारे जीवन में रौनक, रूहानियत आएगी और रूहानियत से सेवा में रौनक आएगी। तो सभी को प्रभाव पड़ेगा। हमारा कौन सा बाप मिला है? ऊंचे से ऊंचा बाप मिला है और ऊंची स्थान मिला। कौन सी ऊंची स्थान मिला है? दो ऊंची स्थान है, बाप का दिल तक था और दूसरा जहां पर भी आए हैं मधुबन। और स्थिति भी हमारी ऊंची है। स्थिति कौन सी ऊंची है? सोमान की स्थिति सबसे ऊंची स्थिति है। तो बाप मिला, ऊंची स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, और कुछ चाहिए? बाबा पूछ रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं चाहिए, है ना? अभी आएगा भविष्य में। हमने पहले ही बोल दिया कि आप हमने ढूंढा है, हमको नहीं मिला, आप सब ढूंढ के देख लीजिएगा। अगर बाप मिला, ऊंची स्थान मिला, ऊंची स्थिति मिली, तो अभी कुछ नहीं चाहिए। तो इससे अगर बाप मिला है, ऊंची स्थान और ऊंची स्थिति मिला है, तो हम क्या दुनिया को क्या दिखाई देंगे बच्चे? फरिश्ता रूप में दिखाई देंगे, बाबा कहते हैं। तो फरिश्ता रूप में देखना ही बाबा जो बता रहे वही भविष्यवाणी है। इस मुरली में बाबा ने दीदी को याद किया कि दीदी का दिन अभी आ रहा है। 21 जून है, 28 जून दीदी का अव्यक्ति दिवस है, जुलाई है, और 28 जुलाई दीदी का अव्यक्ति दिवस है, और दिसंबर में बाबा आए हैं, और डबल विदेशी भाई बहने भी आए हैं, उसमें दादी जानकी भी आई है। तो उसमें दीदी को भी बाबा ने याद किया है, और क्योंकि दीदी से सभी खास विदेशी भाई बहनों को ज्यादा स्नेह था, तो बाबा कहते कि दीदी भी सूक्ष्म रूप में सेवा करती है। दादी के अंदर दीदी समाई हुई है और सूक्ष्म रूप में सेवा करती है, और दीदी कर्मातीत हो गई है, तो इसीलिए एक ही समय में कई प्रकार की सेवा कर सकती है क्योंकि कर्मातीत हो गई है। और दीदी को शुरू से कौन सा पाठ था? शुरू से ट्रांस का पाठ था, ट्रांस का पार्ट था, इसलिए ट्रांस में जाके ट्रांसफर हो गई और हवा के मुआफिक दीदी चली गई। तो ट्रांस में जाकर ट्रांसफर हो गई, और भविष्यवाणी बाबा ने यह किया है कि कई सारे कार्य एक ही समय में कर्मातीत जो होने वाली आत्मा कर सकते हैं। फिर बाबा ने यहाँ पे खास, इसमें ये खास पॉइंट है भविष्यवाणी का कि विदेशी बच्चों को बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने सकार में होते हुए बहुत आह्वान किया है। उसी आह्वान के कारण से विदेशी बच्चे बाबा के घर में पहुंच रहे हैं और इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि ये सहकार के आह्वान से यहाँ पे पहुंचे हैं और सहकार के आह्वान से पहुंचने के कारण प्यार के अधिकारी है, ये स्नेह के अधिकारी है। और कितने समय तक वो गर्भ में रहा हुआ है बाबा ने ये भी कहा है उसमें। फिर बाबा कहते डबल स्थिति में स्थित होकर सेवा करो तो क्या है, तो मुश्किल शब्द समाप्त हो जाएगी। डबल लाइट स्थिति में स्थित होकर सेवा करो तो मेहनत और मुश्किल शब्द समाप्त हो जाएगी, भावना और भाव में परिवर्तन आ जाएगी, ट्रस्टीपन की भाव होगी और ईश्वरीय भावना आ जाएगी। तो ईश्वरीय भावना और ट्रस्टीपन की भाव आने से जो भी हमारा है वो किसका है, तो बाबा का हो जाएगा। ये जो कपड़ा पहने ये भी किसने दिया, तो बाबा ने दिया है, हमें दिया है यूज करने के लिए, तो ये भी बाबा का है, ये शरीर भी बाबा का है, घर जो मकान तीन पर पृथ्वी मिला वो भी किसका है, तो माता जी बाबा का है। हम समझते ना। तो अभी बाबा कहते हैं कि जो भी आप कार्य करते हो, जो भी कार्य करते हो ईश्वरीय सेवा समझकर करते हूं, तो इसीलिए मेहनत जो है ना मोहब्बत में बदल गया है, मेहनत मोहब्बत में बदल गया है। और ये मिलना भी क्या है, तो मोहब्बत का मिलना है। इतना दूर से हम सब सिकंदराबाद से हमारे भाई बहन आए, मेहनत नहीं, मेहनत तो बहुत किया होगा लेकिन मेहनत मोहब्बत में बदल गया है कि नहीं, और सब कुछ क्या हो गया, तो सब कुछ क्या बोलते हैं हम, सहज हो गया, इस हर बात में हमारे निमित्त भाव आ गया है। ठीक है, ओम शांति।
ओम शांति। ऐसी भविष्यवाणी सुनी आपने कभी? तो मुरली से टॉपिक मेथड है, 10 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है डबल लाइट स्थिति बनाने के 16 सूत्र। अब वो 16 सूत्र अलग से हैं लेकिन ये टॉपिक का नाम है डबल लाइट स्थिति बनाने के 16 सूत्र। अमानत में दूसरा टॉपिक है अमानत में ख्यानत डालती आसक्तियां। तीसरा है राज्य भाग्य की विस्मृति से पुरुषार्थ में पसीना भाते पुरुषार्थी, राज्य भाग्य की विस्मृति से पसीना भाते पुरुषार्थी। नेक्स्ट है पुरुषार्थ से दूर करती माया की रंगत, पुरुषार्थ से दूर करती माया की रंगत। नेक्स्ट है सेवा की हाई स्पीड का साधन रूहानियत की शक्ति। नेक्स्ट फरिश्तों की अंतिम उड़ान। नेक्स्ट संकल्प शक्ति से सेवा। और आठवां है बेहद की सेवा का साधन, क्या साधन बताया होगा, कर्मातीत अवस्था। नौवां है रूहानी प्रोजेक्टर से साक्षात्कार की सेवा। और दसवां है मूड को रिफ्रेश करने की, क्या बताया था, मुरली तो पढ़ी होगी ना सबने, क्या बताया फिर, मूड को रिफ्रेश करने के लिए गुणों ज्ञान गुण और सर्वशक्तियों की पर्सनैलिटी, मूड को रिफ्रेश करती ज्ञान गुण और सर्वशक्तियों की पर्सनैलिटी। तो ये 10 टॉपिक थे और जो 16 सूत्र हैं डबल लाइट स्थिति के, एक एक लाइन में पढ़ के सुना देता हूं। पहला है बाप दादा की छत्रछाया में रहना, बाप दादा का बार बार आह्वान करना, निमित्त भाव कार्य में निमित्त भाव कर्म करते। चौथा कर्ण करावन हार की स्मृति। नेक्स्ट बाबा से रूहान करना, बातें करना बीच बीच में सारे दिन में। नेक्स्ट बार बार अशरीरीपन का अभ्यास। नेक्स्ट बाप दादा का वरदानी हस्त स्वयं के मस्तक पर अनुभव करना। नेक्स्ट अपने भाग्य के गुणगान करना। नेक्स्ट योग के मनोरंजक अभ्यास करना, साक्षी दृष्टा स्थिति, ज्ञान का मनन चिंतन, ड्रामा की समर्थ स्मृतियां, टाइम वेस्ट नहीं करना, माफी मांगना, माफ करना, धन्यवाद देना, हर बात में बैलेंस और सेवा को बाबा के आगे समर्पित कर देना। ये 16 सूत्र है डबल लाइट स्थिति को बनाने के लिए। ओम शांति।
पोयम मेथड है डबल लाइट की स्थिति से मेहनत समाप्त। दूर से दूर और नजदीक से नजदीक है बाप दादा का देश, साकार दुनिया की बाउंड्री से पार वे है लोक विशेष। बाप को वतन से आने जाने का खर्चा नहीं लगता, बच्चों को कितने घंटे मेहनत का धन देना पड़ता। गवाह के राज्य भाग्य करते मेहनत तन मन धन की, कहां विश्व के राजे ताज तख्तधारी, अब बन पड़े सर्वेंट गवर्नमेंट की। निमित्त ट्रस्टी बन सर्वशक्तिमान बाप की शक्ति से सभी कार्य करते, स्मृति के कनेक्शन के आधार से अब डबल लाइट बन चलते रहते। डबल लाइट की स्थिति से मेहनत मुक्त, मुश्किल शब्द समाप्त। डबल लाइट की स्थिति से मेहनत मुक्त, मुश्किल शब्द समाप्त। ट्रस्टीपन के भाव ईश्वरीय सेवा की भावना से जीवन बना न्यारा और निश्चिंत। तन मन धन सब बाप को दिया व कुछ रखा है किनारे। ब्रह्मा बाप विदेशी बच्चों का आह्वान कर कहते, आओ मेरे विशेष बच्चे प्यारे। दीदी दादी व निमित्त आत्माओं में सदा ही दिखता बाप, अल्लाह के बगीचे के रूहानी खुशबू देने वाले रूहानी गुलाब हो आप। एक व्रता के व्रत को ले रूहानियत को धारण करना, जिस्म को ना देख रूह को देखने की अब प्रैक्टिस करना। अमानत समझने से होंगे अनासक्त और आएगी रूहानियत, तीनों लोकों का चित्र स्पष्ट देखेंगे, नहीं लगेगी माया की रंगत। सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति है सदा स्नेही बनो, ज्ञान युक्त रहम के साथ रूहानियत का रूहाब भी धारण करो। यह शरीर है अमानत ईश्वरीय सर्विस के लिए खास, रूहानियत की शक्ति से संपन्न बनो तो होंगे हर पेपर में पास। ऑप्शन
ओम शांति 23/12/28 अव्यक्त मुरली कल चलने वाली रिवाइज करेंगे चार्ट मेथड में। इसमें हेडिंग की है डबल लाइट फरिश्ता बनने से क्या होगा, मेहनत मुक्त बनेंगे। दो शब्द है डबल लाइट। डबल लाइट कैसे बनेंगे, डबल लाइट बनने के लिए कौन सी ऐसी हमको चार्ट रखना होगा, आप लोग कल रात को सुनाऊंगा भाई साहब का क्लास, उसमें एकदम क्लियर हर पॉइंट बता दिया, माना हमारा पूरा दिनचर्या में सेट करना होगा, बार बार चेकिंग करना होगा, तब जाके डबल लाइट बन सकते, तब जाके मेहनत मुक्त हो सकेंगे। इसलिए हम रोज की मुरली का एक ऐसी, पहले पहले शुरू में मुरली लिखते हैं तो चार प्रकार की पॉइंट्स निकालते थे, ज्ञान योग धारणा सेवा का, इस तरह हम भी मुरली को ऐसा लिखे, हम सेवा करते हुए डबल लाइट रहने के लिए कौन सी ऐसी बातें बाबा ने बताया साकार मुरली से, ऐसा हम लिखने से वो पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करने से डबल लाइट बन सकते हैं। इसके लिए मैंने 16 पॉइंट निकाला चार्ट अपने स्वयं का चेकिंग करने के लिए। सारा दिन डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हुए मेहनत मुक्त रहे। दूसरा, स्नेह की पूंजी से एक सेकंड में पारलोक पहुंचने का अनुभव किया, कहां परमधाम, विश्व के मालिक ताज तख्तधारी सर्व प्राप्तियों के भंडार के मालिक राज्य अधिकारी राज्य भाग्य करने वाले इस स्मृति में रहे। विश्व के मालिक ताज तख्तधारी सर्व प्राप्तियों के भंडार के मालिक राज्य अधिकारी राज्य भाग्य करने वाले इस स्मृति में रहे। चौथा, सेकंड में स्वराज अधिकारी के अधिकारी की स्थिति में स्थित होने का अनुभव किया। कर्म करते हुए करावन हार की स्मृति स्वरूप होकर रहे।
सेवा करते समय निमित्त भाव रहा, बाप के डायरेक्शन प्रमाण तन मन धन को सेवा में लगाते हुए न्यारे और प्यारे रहे, बार बार ये अनुभव किया कि बाप दादा स्पेशल मेरे से मिलने के लिए आए हैं। क्या बाप दादा स्पेशल मेरे से मिलने के लिए आए? एक बार भाई साहब का क्लास में ये चर्चा हुआ था कि हॉल में बैठे हैं, कहाँ भी बैठे हैं, मगर मैं अकेला ही बाप से याद कर रहा हूँ या बाप से प्यार कर रहा हूँ। ये अनुभव करके देखो, स्वयं फरिश्ता बनकर दूसरों को भी फरिश्ता स्थिति का अनुभव कराया, सारा दिन में रूहानियत का सैंपल बनकर रहे, एक व्रता का अटेंशन रखकर एक बाबा की याद में रहे, स्वयं को बाप दादा की अमानत समझकर रूहानियत कायम रही, सारा दिन में कर्म करते खाते पीते चलते फिरते अनासक्त भाव में रहे, सर्व शक्तियों की पर्सनालिटी और रूहानियत की शक्ति से दूसरों की वृत्तियों को बदलने की सेवा की, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो विजयी का अनुभव किया। इसमें एक पॉइंट था, ये तो चार्ट का है, एक पॉइंट था, जब भी दादी दीदियों से मिलते हैं तो किसको देखना है? बाप दादा का अनुभूति करो। मेरे याद है एक बार मधुबन वालों का क्लास था हिस्ट्री हॉल में, गुलजार दादी उस समय थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था, वहीं हिस्ट्री हॉल में क्लास था, दादी आके बैठी थी। जब शुरू में दादी ने योग कराया, हर एक ने मोस्टली ये अनुभव किया बाप दादा ने आके दृष्टि दिया। इसलिए कभी भी दादियों से बड़ों से मिलने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर बाप दादा की स्मृति हो तो वो अनुभूति जरूर होती है। मेरे याद है दादी, जब दादी के कमरे में दादी यहाँ गुलजार दादी तीन चार दिन रही थी मधुबन में, तो रोज रात को दादी के पास हम लोग थोड़ी सी बैठते थे, चिट चाट करते थे, उसके बाद लास्ट में दादी खास 5 मिनट के लिए सब साइलेंस हो जाओ, माना दादी इतना पावरफुल दृष्टि देती थी। जब भी हमने दादी से मिला वहां रात को, बाप दादा स्वयं वहां पधारे हैं, दृष्टि दे रहा, ये अनुभूति होता रहा। ओम शांति।
शांति। ये रिक्त स्थान पूर्ण करने का मेथड है, यही है ना? अगर ब्राह्मण जीवन से मुरली को रिक्त कर दिया जाए तो क्या हाल होगा? नहीं नहीं, ये जनरल। हाँ, उसी अनुसार बाबा ब्राह्मण जीवन से हट जाए तो तो ऐसा वाक्यों में भी कुछ शब्द को रिक्त कर दिया जाए तो वाक्य का हाल क्या होता है, वो आप सबको पूर्ण करना है। अच्छा, मुरली से, मुरली के जो वाक्य है ना, नहीं है जो जो पढ़े हैं, बाकी लोग भी दे सकते हैं अपने अनुसार। यह ज्ञान का गुण है, उसमें पहला रिक्त माने डैश है, डैश यह ज्ञान का गुण है। हाँ हाँ, बीच पहला वाला लिखना है आपको, बा बोलना है। हाँ, वो तो बताऊंगा। सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है। उन्होंने क्या बोला? अच्छा अच्छा, ठीक है। दूसरा, ये तो सहज है एकदम। अमानत में खयानत करेंगे तो रूहानत के बदले डैश आ जाएंगे, नहीं यह है उलझन में आ जाएंगे। अच्छा, राहत के बजाय, अच्छा ये वो सिस्टम नहीं किया है। अच्छा, राहत के बजाय डैश
में आ जाएंगे, घबराहट ये ठीक है। अच्छा, रूहानी बाप की अमानत है डैश रूहानियत रहेगी और रूहानियत सदैव डैश रहेगी तो थकावट नहीं होगी। अब फिर बता रहा हूँ, रूहानी बाप की अमानत है डैश डैश रूहानियत रहेगी और रूहानियत सदैव डैश रहेगी थकावट नहीं आएगी। अच्छा, रूहानी बाप की अमानत है डैश, अमानत समझने से रूहानियत आएगी और रूहानियत से जो डैश बोला था बुद्धि में राहत रहेगी। अमानत समझने से अमान बताया ना, बुद्धि में राहत, पहला वाला अमानत समझने से। दो बार है, रूहानी बाप की अमानत है डैश अमानत समझने से, हाँ अमानत समझना। उसी संदर्भ में अमानत समझने से डैश रहेंगे अनासक्त, और अनासक्त होने से रूहानियत रहेगी आएगी। अच्छा, बाप मिला डैश डैश और क्या चाहिए, हाँ बाप मिला डैश डैश और क्या चाहिए, हाँ आपने भी बोला था, नहीं परसों दिन बोला था, पहले हम लोग को बताया, हाँ ऊंचा स्थान ऊंची स्थिति मैंने सुना था, कब टाइम मुझे पता नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी आपके तरफ देखेंगे उनको क्या दिखाई देगा डैश, जो भी आपके तरफ देखेंगे उनको डैश दिखाई देगी, फरिश्ता रूप, फरिश्ता रूप। अच्छा, शुरू से लेकर दीदी का विचित्र ट्रांस का पाठ रहा, अंत में विचित्र रूप में डैश हो गई, ये सब पास हो गया, एकदम फुल पास ट्रांसफर हो गई, अभी चर्चा हुआ ना। कर्मातीत आत्मा को डैश कोई मुश्किल नहीं है, कर्मातीत आत्मा को डैश कोई मुश्किल नहीं, डबल पार्ट बजाने में कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि बहुत लोग पढ़े नहीं ना इसीलिए। ठीक है, ब्रह्मा बाप ने बहुत स्नेह से डैश आप बच्चों को आह्वान किया, समझा, हाँ नहीं डैश बोला ना, ब्रह्म क्या बोला, ब्रह्मा बाप ने बहुत स्नेह से डैश आप बच्चों को आह्वान किया, समझा, साकार रूप में वारिस बनने में, वही बोला ना साकार रूप में, हाँ साकार रूप में वारिस बनने के। अच्छा, टेडी चीर वो क्या, अच्छा अच्छा, इसकी निशानी है बाप और बच्चों के डैश, नहीं ये चलो ठीक है, गलत हो गया, वो लिखा नहीं है हमने। तो बाप दादा ने बच्चों की डैश जन्म जन्म बोल दिया हमने, आपसे अनेक जन्मों तक मेहनत छुड़ा दिया। बाप दादा ने बच्चों की डैश अनेक जन्मों की मेहनत से छुड़ा दिया। जन्म जन्म की मेहनत देख, ये डैश था, जन्म जन्म की मेहनत देख अब अनेक जन्मों के मेहनत से छुड़ा दिया। क्लियर हुआ? अच्छा पूरा कर देंगे। एक आप घर में नहीं रहते डैश रहते हो, आप घर में नहीं रहते डैश रहते हो, डैश में रहते हो, बाबा के घर में, बाप के घर में। अच्छा और एक डैश अभी बाबा का घर कहते हो ना, डैश ओह भी बाबा डैश ओह भी बाबा बाबा का घर कहते हो ना? नहीं, वो जो तीन पैर पृथ्वी मिली है ना, उसको तीन पैर जो पृथ्वी मिले उसको भी बाबा का घर समझते हो ना? ओम शांति।
दो लोग नहीं आए हैं तो अभी हम ये इंस्टेंट मेथड करते हैं, हमारे पास 5 मिनट है। जिन्होंने नहीं किया, अरविंद भाई जाना है तो एक करके जाओ, 2 मिनट इंस्टेंट मेथड। फरिश्तों की अंतिम उड़ान, 2 मिनट स्टार्ट।
ओम शांति। टॉपिक है फरिश्तों की अंतिम उड़ान। इस संगम युग पर बाबा ने ब्राह्मण आत्माओं को जो लक्ष्य दिया है कि आपको संपूर्ण कंप्लीट कर्मातीत बनना है, जिसको बाबा कहते हैं कि आपका ये अंतिम फरिश्ता स्वरूप है, तो उसके लिए बाबा ने कहा कि इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी है। पहले से फरिश्ता स्वरूप के बारे में जानना है कि फरिश्ते अर्थात क्या, फरिश्तों की विशेषताएँ क्या हैं, फरिश्तों के कर्तव्य क्या हैं। तो बाबा ने कहा कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, उनका तन भी लाइट है और मन से भी लाइट है, और फरिश्ते अर्थात जो ईश्वरीय खजाने हैं उनसे परिपूर्ण, उनसे भरपूर, साथ साथ संसार की आत्माओं की जो अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, तमन्नाएं हैं, भगवान से मिलने की या भगवान के पास जो खजाने हैं उनको प्राप्त करने के, तो फरिश्तों का वो कर्तव्य है कि संसारिक आत्माएं उन आत्माओं को उन प्राप्तियों की उनकी अनुभूति कराना, उन आत्माओं को वो सब अनुभव कराना जो आत्माएं भगवान से प्राप्त करना चाहती हैं। और फरिश्ते अर्थात देहभान से मुक्त, जो लंबे समय से हम देहभान में थे आधा कल्प से, तो फरिश्ते बनना अर्थात आहिस्ते आहिस्ते उस देहभान से अपने आप को मुक्त करते जाना, यह है फरिश्तों की अंतिम उड़ान। और बाबा ने कहा कि फरिश्ते इस देश के नहीं है, फरिश्ते कहीं से आते हैं, संसार में मान्यता है कि फरिश्ते कहीं और स्थान से आते हैं, ये भगवान के मैसेंजर हैं, भगवान का विशेष संदेश देने के लिए फरिश्ते आते हैं। तो हमेशा इस बात को हमें अपने आप में अप्लाई करना है कि हम इस देश के नहीं हैं, परदेशी हैं। किस देश से आए हैं? परलोक से आए हैं, दूर देश से आए हैं, सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो ये फरिश्तों की उड़ान।
श्याम भाई जी, दूर करती माया की रंगत, स्टार्ट।
ओम शांति। पुरुषार्थ से दूर करती माया की रंगत, चलिए। जैसे माया तो जब हम बाबा के नहीं बनते हैं उसी समय से माया होती है, लेकिन माया की पहचान नहीं होती हमें, और जब हम बाबा के बनते हैं तो उस समय हमें माया की पहचान होती है कि एक्चुअली माया क्या है। दुनिया में जैसे लोग कहते हैं कि धन भी है जो माया है, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, धन जो है माया नहीं है, लेकिन अगर हम उसे गलत तरह से यूज करेंगे तो धन भी जो है माया का रूप बन जाता है। तो ऐसे कहा देखा जाए तो कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित है, तो हमारे लाइफ में जो भी चीज़ अति में जा रही है वो सब कुछ माया है। जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन हम उस चीज़ में जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि जिस रास्ते पे जाना नहीं है उस रास्ते का एड्रेस क्यों पूछना। तो जिस भी चीज़ में हम अति में जा रहे हैं वो हर एक चीज़ माया है। अगर हम पुरुषार्थ को छोड़ दें केवल अगर कोई धारणा की बातें ही कर रहा है तो भी एक तरह से माया है, क्योंकि हम धारणा कर तो नहीं रहे, केवल धारणा की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हम योग की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि योग में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन हमें खुद को अनुभूति नहीं हो रही है तो भी एक तरह से माया है। तो जिस भी चीज़ में हम अति में जा रहे हैं वो हर एक चीज़ माया है। तो माया जैसे कहते हैं ना कि अलग अलग रूप बना के हमें अपनी तरफ खींचती है, तो माया का जिसमें जिस प्रकार की कमजोरी होती है उसी रूप में माया उसके सामने आती है। तो माया को जो परखना जो है बहुत मुश्किल का काम होता है कि सचमुच ये माया है या क्या है, क्योंकि अंदर से तो मन कहता है कि नहीं हम राइट कर रहे हैं, हम बराबर कर रहे हैं, बाबा की ये श्रीमद है। दूसरों को श्रीमद सुनाना बहुत इजी होता है, वो भी एक माया का रूप है कि हम दूसरों को ज्यादा श्रीमद सुनाते हैं, बैलेंस का ज्ञान देते हैं, लेकिन हम खुद कितना बैलेंस कर रहे हैं, खुद कितना श्रीमद पर चल रहे हैं। ठीक है, कहीं पे ऊपर नीचे होता है वो बात अलग होती है, लेकिन सचमुच हम उस बात में जो है अपने आप को अपने आप में वो चीज धारण करके कितना हम दूसरों को सुना रहे हैं। तो माया की रंगत जो है, माया जो है अंत तक छोड़ेगी नहीं, बाबा हमेशा कहते हैं। तो माया की रंगत को पहचानेंगे तो हम जो है माया से उतना अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हमने जो कल चलने वाली अव्यक्त मुरली, तो सभी को इसी तरह से